हम लोगों की ज़िंदगी जो है उसके भी बहुत सारे मुख्तलिफ पहलू हैं, लेकिन सबसे खूबसूरत पहलू उस वक्त सामने आता है इंसान की असल शख्सियत का, जब उसको किसी इम्तिहान में मुब्तला कर दिया जाए। अगर कोई पढ़ाकू बच्चा है, बहुत ही पढ़ने वाला बच्चा है, उसका जब तक इम्तिहान नहीं लिया जाता और रिज़ल्ट उसका नहीं आता, तब तक अंदाज़ा भी नहीं हो सकता वो कितना पढ़ता है या सिर्फ आगे किताब खोले हुए उसी वक्त अंदाज़ा होता है। खुदा ने भी मुख्तलिफ इम्तिहान के ज़रिए हम लोगों को आज़माने की कोशिश की और आज़माता रहता है। अब हम लोगों की ज़िम्मेदारी है कि हम लोग अच्छे पेपर के ज़रिए ये साबित कर दें कि वाकई हाँ, हम उसके शुक्रगुज़ार हैं और उसके बातों पर अमल करने वाले हैं। और सब्र भी उसी का कह सकते हैं, इसी जंजीर की एक कड़ी है। प्रोग्राम सुबह ज़िंदगी में खुश आमदीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दुरूद और सलाम हो मोहम्मद और आल मोहम्मद पर। नाज़रीन, आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ और खुश आमदीद कहता हूँ आपको प्रोग्राम सुबह ज़िंदगी में। और
चलिए मैं भी सलाम अर्ज़ कर लूँ। हाँ बिल्कुल जी, बहरहाल मैं भी सलाम अर्ज़ करता हूँ आपकी खिदमत में भी और अपने प्यारे नाज़रीन की खिदमत में भी। अब आप बात कर सकते हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक चीज़ बताने जा रहा था, चलें आपने शुरू कर दिया, बहुत ही अच्छा किया। इसी के हवाले से इंशाल्लाह के हम लोगों को किस तरह से बात करनी चाहिए, इसके बारे में एक छोटा सा मजमून हमने तैयार किया है अपने नाज़रीन के लिए, वो इंशाल्लाह आपके हम खिदमत में पेश करेंगे। और कई दीगर चीज़ें हमने आपके लिए तैयार,
गुफ्तगू करने के आदाब जो हैं उसके बारे में।
आदाब तो नहीं, लेकिन उसमें हम कह सकते हैं टिप्स हैं कुछ।
हाँ टिप्स
उसमें, ताकि आपके बात ज्यादा मुफीद साबित हो सके।
हाँ ये और उस तरफ से।
हाँ बिल्कुल, ये बहुत ही अहम चीज़ है। और इसके अलावा एक दो और चीज़ें भी, आज का प्रोग्राम जरूर देखिएगा, हम बताएंगे। बच्चों में एक खास चीज़ होती है, वो ये है कि सब्जी तरकारी से काफ़ी हद तक भागते हैं, तो उसके बारे में क्या किया जाए और क्या होता है कि बच्चे इस चीज़ की तरफ उनका रुझान नहीं होता और ज़्यादातर खूबसूरत चीज़ों की तरफ रुझान होता है। वैसे सब्ज़ी हम लोगों की नज़र में खूबसूरत होती है, लेकिन बच्चों की नज़र में हो सकता है ना हो।
बड़ी अच्छी बात की आपने। बिल्कुल, जो ज़ाहिर में जो ऐसी खूबसूरत चीज़ लग रही थी, इसी वजह से हसन कहा जाता है कि जो बच्चे जो नाश्ता अच्छी तरीके से नहीं कर पाते या वो जो कुछ भी उनको दिया जाए वो कहते हैं नहीं नहीं भूख नहीं लगी फला, तो उसके लिए कहा जाता है, उनकी माओं को कहा जाता है कि आप जो है मसलन बनाएं वही सादा चीज़ लेकिन उसके ऊपर थोड़ा सा उसको जो है खूबसूरत कर दें। अगर आप फ्राई अंडा अपने बच्चे को देती हैं तो उसके ऊपर थोड़ी सी धनिया डाल दी और थोड़ा सा उसके इर्द गिर्द जो है वो टमाटर को गोल सा करके रख दिया, ये हकीकत है।
नाश्ता कर लिया है आपने?
मैंने नाश्ता नहीं अभी नहीं किया।
तो हमारे ख्याल में आप ही की बुरी हालत होगी, मैं तो करके आया हूँ नाश्ता, इसलिए ज़्यादा तफसीलात में खाने की वजह और कैसे सजाया जाता है। बहरहाल नाज़रीन, आप हमसे अगर रब्ता करना चाहते हैं प्रोग्राम के दौरान या प्रोग्राम के बाद, ये हिस्सा देखिए। जी नाज़रीन, इस वक्त हो रहे हैं 6:35 और हम प्रोग्राम सुबह ज़िंदगी लेकर फिर से आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। और आज भी हम बहुत ही ज़बरदस्त गुफ्तगू भी करने जा रहे हैं और एक जो बहुत ही ज़्यादा मुश्किलात हम लोगों को पेश आती हैं उसके हवाले से खुर्रम भाई अभी आपको बताएंगे, लेकिन मैं एक और चीज़ बताता चलूँ अगर वक्त मिला। एक ख़ास होटल के बारे में वो बात करते हैं आपसे। होटल जो है बहुत ही ज़बरदस्त होटल्स दुनिया भर में होते हैं, 5 स्टार बताएं, 7 स्टार, क्या क्या स्टार, और उसमें जो मुख्तलिफ जो सहूलियात होती हैं, जैसे एक बार आदमी जाए तो बाहर निकलने का दिल नहीं चाहता, लेकिन ये एक ख़ास होटल है, बहुत मुख्तलिफ है, बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है। और अगर वक्त मिला मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये मज़मून।
जो है टूरिज्म डिपार्टमेंट भी हसन ने संभाल लिया है, तो आज आपको होटल के बाहर होटलिंग के बारे में भी बताएंगे। मैं सिर्फ आपको ये बताते चलूँ कि हमारा हफ्ते का मौजूद जो चल रहा है वो सब्र चल रहा है। इसके बारे में आप जो कुछ कहना चाहें, आपके जहन में आपका क्या ख्याल है, कब सब्र करना चाहिए कब नहीं करना चाहिए, इसके बारे में हमें ज़रूर बताइएगा, हम लोग भी बात करेंगे आपके साथ
इंशाल्लाह। तो चलते हैं पहले इस्फहान का, यानी एक चक्कर लगाते हैं इस्फहान, अपने नजफी भाई आपको घुमाएंगे, बहुत ही खूबसूरत शहर है, चलते हैं देख के वापस आते हैं और डॉक्टर सलान उस वक्त तक आके हमें ज्वाइन कर लेंगे।
बिल्कुल
ناظرین پروگرام کے اس حصے میں ہم آپ کو اصفہان کی ایک اور خوبصورت اور تاریخی عمارت سے آشنا کراتے ہیں جس کا نام ہشبہش محل۔ یہ عمارت صفوی دور حکومت کے اواخر میں بادشاہوں کے رہنے کے لیے بنائی گئی ہے۔
ہش بہش انہیں آثار قدیمہ میں سے ایک ایسی جگہ ہے کہ جو اصفہان کی خوبصورتی کو اور اضافہ دے رہی کر رہی ہے اور اس کو بڑھا رہی ہے اور اس کی خوبصورتی میں چار چاند لگا رہی ہے۔ اور میں یہ چاہوں گا اور تمام ناظرین سے یہ گزارش کرتا ہوں وہ ایک مرتبہ اصفہان آئیں اور خود اپنی نظروں سے دیکھیں کہ کتنی چیزیں اصفہان میں پائی جاتی ہیں، کتنے آثار قدیمہ اصفہان میں پائے جاتے ہیں، تاکہ اصفہان سے بھی تاریخ اصفہان سے ہم آشنا ہوں اور سمجھیں کہ ہاں ہمارے یہاں بہت سے ایسے متعدد اسلامک جگہیں ہیں کہ جہاں جن سے ہم استفادہ کر سکتے ہیں اور فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔
اصفہان کی جس کے بارے میں مشہور ہے کہ اس کو نصف جہان کہا جاتا ہے۔ نصف جہان یعنی خوبصورتی اور زیبائی کے لحاظ سے جب ہم اصفہان کو دیکھتے ہیں تو پوری دنیا میں اس کا ایک آدھا حصہ ایسا ہے کہ جو اصفہان کو کہا جا سکتا ہے کہ اصفہان پوری دنیا میں آدھا حصہ خوبصورتی کا ہے۔ اسی طریقے سے جب میں اصفہان میں تشریف لایا تو اصفہان میں متعدد جگہیں ایسی ہیں جہاں پر انسان سیر و تفریح کے لیے جا سکتا ہے۔ سیر و تفریح بعین معنی کہ قرآن نے بھی کہا ہے کہ سیرو فی الارض، اے بندگان خدا زمین پہ سیر و تفریح کرو، کیونکہ ان کاموں سے انسانوں کے دلوں کو خوشی اور فرح محسوس ہوتا ہے۔ کیونکہ اگر انسان خوشی اور تفریح چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ جو شاد اور فرح آور زمینیں ہیں وہاں پر انسان جا کر کے سیر و تفریح کرے۔
ناظرین ہمیں نہیں معلوم کہ اصفہان کی تمام خوبصورتیوں کو دیکھنے کے لیے ہمیں کتنے وقت کی ضرورت ہے، ایک دن، ایک ہفتہ یا ایک عمر۔
جی ناظرین، اور ہم ایک اور حصہ لے کر آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہیں پروگرام صبح زندگی کا۔ ڈاکٹر سید اسد اللہ ارسلان اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، چلتے ہیں ان کے پاس اور گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔
جی بہت شکریہ حسن، اور جی بالکل ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب موجود ہیں اسٹوڈیو میں، اور ڈاکٹر صاحب جو ہے آج ایک بڑے اہم موضوع کے اوپر گفتگو کرنے جا رہے ہیں جس کو ہم لوگ میڈیکل سائنس میں فروزن شولڈر یا کندھے کا جام ہونا، کندھے کا جو ہے حرکت نہ کر پانا، اس کے بارے میں ڈاکٹر صاحب گفتگو کریں گے۔ تو میں سلام عرض کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں، اور بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلیکم السلام، اور آپ لوگوں کا بھی بہت شکریہ، آپ کا اور صحت کی پوری ٹیم کا میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ لوگوں نے مجھے آج کے اس پروگرام میں مدعو کیا۔
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب فروزن شولڈر آپ نے کہا، اس پہ بات کریں گے، کیا ہے کیا فروزن شولڈر؟
دیکھیں اس میں اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں تو بعض افراد جو ہیں ہمیں ایسے ملتے ہیں جن کو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے جو کندھے کی موومنٹ ہے، بازو کی موومنٹ، وہ صحیح طریقے سے جو ہے آزادانہ طور پہ ایک نارمل حالت میں وہ انجام نہیں دے پاتے۔
ٹھیک ہے۔
میرے ایک ٹیچر تھے ایف ایس سی میں،
جی
وہ کلاس میں جو تھے وہ جب بلیک بورڈ پہ لکھتے تھے تو ایک خاص سطح پہ لکھتے تھے، اسٹوڈنٹ کہتے تھے سر تھوڑا سا اوپر کر کے لکھیں۔
اچھا۔
تو اس وقت چونکہ میں میڈیکل کا اسٹوڈنٹ نہیں تھا، مجھے نہیں پتا تھا، تو اس کا جو ربط ہوتا ہے، ایک تسلسل ہوتا ہے اس کی، ان کی سابقہ زندگی میں ہوتا ہے، سابقہ ان کی زندگی میں کچھ ایسے واقعات پیشے آئے ہوتے ہیں، کچھ ایسی بیماری ان کو لاحق ہوئی ہوتی ہے جس کی وجہ سے جو اب وہ اس کے نتائج سامنے آتے ہیں.
ٹھیک ہے.
سابقہ دور میں کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ بیماری کسی بیماری کی ثانوی جو نتیجہ ہے اس کی صورت میں یا پھر کسی درد کی وجہ سے وہ اپنے کندھے کو موو نہیں کرتے, اس کو حرکت نہیں دیتے, وہ ایک خاص مدت تک جو ہے فکسیشن کی حالت میں رہتا ہے, جکڑا رہتا ہے.
ٹھیک ہے.
تو اس کے باعث جو ہے بعد میں جو ہے اس وقت کیوں جکڑا رہتا ہے وہ موو نہیں کرتا, کیونکہ ایک درد کا خوف اور درد کی جو کیفیت ہے وہ جو اس بندے پر ہے وہ غالب ہوتی ہے.
صحیح.
اور کچھ عرصے کے بعد وہ درد چلا جاتا ہے لیکن وہ جو فکسیشن ہے اس میں جو تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں وہ برقرار رہتی ہیں.
ٹھیک ہے.
اب اس جو حالت ہے میڈیکل میں اس حالت کو 1934 تھا, اس میں جو ڈاکٹر گوڈمن صاحب تھے انہوں نے اس حالت کو فروزن شولڈر کا نام دیا اور میڈیکل کے اصطلاح میں ہم اس کو ایڈہیسو کیپسولائٹس بھی کہتے ہیں.
ایڈہیسو کا مطلب وہی چپکا ہوا.
بالکل وہی.
جی ٹھیک ہے.
چپکا ہوا. تو اب اگر ہم اس کی اناٹومی پہ دیکھیں جو ہمارے جسم کی جو جسمانی ساخت ہے, ہم جانتے ہیں کہ ہمارا جسم جو ہے بڑے منظم قسم کے جو ایک مرتب انداز میں مختلف طرح کے پٹھوں, لگامنٹس, ٹینڈونز, شریانوں, وریدوں اور ان کا ایک جو ہے مجموعہ ہے.
ٹھیک ہے.
ہڈیوں کا جو ربط ہے, اگر ہو سکے تو یہ تصویریں جو ان کو
جی بالکل ضرور اگر ہو سکے تو تصویر جو ڈاکٹر صاحب لے کے ہیں وہ دکھائی جائے.
جی. تو وہ جو ہڈیاں ہیں وہ آپس میں ملی ہوتی ہیں, دو ہڈیاں جب ایک جگہ سے ملتی ہیں تو وہاں پر جو ہے وہ جوڑ ہوتا ہے. یہ جو کندھے والا جو جوڑ ہے اس میں نیچے والی جو ہڈی ہے اور اوپر جو اوپر کا جو دھڑ ہے اس کو ملایا جاتا ہے اور اس پورے سٹرکچر کو ایک کیپسول مانند ایک ساخت ہے اس نے اس کو گھیرا ہوا ہوتا ہے.
ٹھیک ہے.
اور کسی بھی جو ہے درد کی وجہ سے مختلف وجوہات اس میں ہو سکتی ہیں, کوئی چوٹ لگ سکتی ہے, کوئی بیماری پیش آ سکتی ہے, تو اس بیماری میں ثانوی طور پر جو ہے اس میں ایک جکڑاؤ آتا ہے اور اس جکڑاؤ کی وجہ سے جو ہے درد کا احساس ہوتا ہے, درد کی وجہ سے جو موومنٹ نہیں ہوتی وہ حرکت نہیں ہوتی. تو لمبے عرصے تک یہ حالت رہے, مریض کو درد ہو جس کی وجہ سے وہ موومنٹ نہیں کر سکتا اور خاص طور پر جو ہے یہ باہر کی جو موومنٹ ہے وہ نہ کر پائے, تو اس حالت کو ہم جو ہے فروزن شولڈر کہتے ہیں. اور بڑی ایک بدقسمتی کی بات ہے کہ ہمارے عام معاشرے میں چونکہ جو اسپیشلسٹ تھے اس کے جو ہیں جو اس چیز کو ٹریٹ کر پائیں فیزیوتھراپسٹ, خاص طور پہ پاکستان انڈیا میں اب بہت بہتری آئی ہے, لیکن پہلے چونکہ یہ نہیں ہوتے تھے تو اس کی وجہ سے جو مریض زیادہ تر یہی کرتا تھا کہ کسی جو ہے میڈیکل سٹور پہ چلا گیا, کیونکہ اس کو جو ایک علامت تھی وہ درد کی تھی. صحیح.
جی, جی, جی.
وہ ایک درد کا ہی اس کو احساس ہوتا تھا تو وہ اس کی جو درد کی جا کے جو پین کلرس ہے وہ لیتا تھا اور اس کے بعد جو ہے اس کو درد سے نجات جو ملتی تھی, اس کو سکون ملتا تھا, لیکن وہ نہیں جانتا کہ اس کو بعد میں اس کے ساتھ کیا بننا ہے. تو اس کی وجہ سے پراپر ٹریٹمنٹ نہیں ہوتی اور بہت سے مریض ہیں اس وجہ سے جو ہیں اس بیماری کا شکار ہوتے ہیں.
ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ جو آپ نے کہا درد کا جو خوف ہے, یہ اس سے آپ کا کیا کہنے کا مطلب ہے؟
دیکھیں, درد کے خوف سے مراد یہ ہے کہ اب خاص طور پر اس بیماری میں چونکہ ایک درد جو ہے ڈر ہوتا ہے.
ٹھیک ہے.
فکسیشن کی وجہ سے
جی
وہاں پہ فکس ہے, وہ سارا کا سارا جو جوائنٹ ہے وہ جوڑ ہے ایک جگہ فکس ہے, مریض کو درد اس وقت ہوتا ہے جب وہ موو کرتا ہے.
ہاں صحیح. جب وہ اوپر لے کے جاتا ہے تو اسی درد سے.
ہاں اسی درد کی وجہ سے وہ کرتا ہے کہ کوشش کرتا ہے کہ ایسی حالت میں رکھے جہاں پر اس کو درد نہ ہو. تو اس کا جو ہے سائیڈ افیکٹ اس کا جو بعد میں جو وہ یہی ہوتا ہے کہ لمبے عرصے تک اسی حالت میں رکھنے کی وجہ سے وہ چیز فکس ہو جاتی ہے. اب یہی ہم بات کر رہے تھے نیچے کی جو مثلا بازو کی ہڈی ہے اور اوپر والا جو ہے یہ جو ہمارا سینے والا ہڈیاں اور یہ والی جو چیزیں ہیں پیچھے اسکیپولا ہے, یہ سارے آپس میں ملے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ شولڈر جو ہے اس کو گلینو ہیومرل جوائنٹ جو ہے ہم میڈیکل کی اصطلاح میں کہتے ہیں, تو اس کے اوپر ایک سارا ایک کیپسول ہوتا ہے.
ٹھیک ہے.
اس میں مختلف طرح کے مسلز ہوتے ہیں جو پٹھے ہیں, اسی کے ساتھ سے شریانیں گزرتی ہیں, وریدیں اسی پورشن سے جو ہمارے جو ہے نیچے بازو میں جو ہے وہ پہنچایا جاتا ہے. تو اس سارے عمل کے بعد جو ہے جب یہ جکڑا جاتا ہے تو یہ حالت.
اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ حالت بیشتر جو ہے پٹھوں کی ہے, لگمنٹ کی ہے, ٹینڈن کی ہے یا ہڈی کی ہے؟
دیکھیں ہڈی کی حالت یہ जो ग्लीनो हुमरल जॉइंट है, अगर आप इसके पे गौर करें
जी जी।
एक तरफ तो ये इसने इस तरह की जो साख बनाई होती है
धड़ की तरफ से जो हड्डी है वो इस तरह आ जाती
है, इस हालत में होती है, और उसके बाद जो है नीचे जो बाजू की तरफ से जो हड्डी होती है वो तकरीबन इस अंदाज में होती है,
मुट्ठी की तरह
तो ये मूव करती है आपस में। अब पट्ठे भी इसमें इफेक्ट होते हैं, बाहर वाले पट्ठे अगर उसमें जो है उसको चोट लगी है पट्ठे को
है।
तो वहाँ पे मुख्तलिफ तरह की तब्दीलियाँ रूनमा होती हैं
है।
तो उसके बाद जो है हड्डी है, हड्डी में कोई मसला आ जाए कोई ना कोई वो बाद में जो है मुख्तलिफ तरह के वहाँ से मादों का अखराज होता है,
है।
वो जो इसकी नॉर्मल मूवमेंट है वहाँ पर एक रगड़ होती है, जब हम बाजू अपना ऊपर लेके जाते हैं तो इस जोड़ के अंदर हम तो यहाँ से महसूस करते हैं कि हमने बाजू को ऊपर लेके गए हैं, लेकिन यहाँ पर एनाटॉमिकली जो है बहुत सारी जो इसमें है एक तब्दीलियाँ आती हैं, इसमें बहुत सारे फंक्शन हो रहे होते हैं। ये हड्डी नीचे की तरफ जाती है फिर, और फ्रोजन शोल्डर में ये होता है कि फिर ये नीचे की तरफ नहीं जा सकती, वहीं पर मसल फिक्स होती है। हम ऊपर की तरफ जाएंगे यहाँ पे इसकी मूवमेंट नीचे की तरफ
होनी चाहिए,
होनी चाहिए, फिर वो नहीं,
नहीं
इसमें मसल भी इन्वॉल्व होते हैं, इसमें टेंडन, वो पूरा उस कैप्सूल के दायरे में जो भी चीज आ गई वो इसमें।
बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, इस गुफ्तगू को आगे चलाएंगे, हमें यहाँ पर छोटा सा वक्फा लेना चलेंगे हसन के पास। जी हसन,
बहुत शुक्रिया खुर्रम, एजाज हुसैन साहब ने हम लोगों को सुबह बखैर कहा है, आपको भी इंशाल्लाह
बहुत ही
सुबह बखैर हो आपकी भी, और उन्होंने कहा है कि अस्सलाम वालेकुम, अच्छाई और नेकी के कामों में कदम रखना और इस राह में जो मुसीबतें आएँ उन पर सब्र करना, इसी तरह जालिम ताकूत इस्तेमार से मुकाबला करने में जो मुसीबतें आएँ उन पर सब्र करना, इस मौके पर मुसीबतों पढ़ नहीं पा रहा हूँ, कायम रहना और उनका मुकाबला करना चाहिए, मुसीबतों पर यानी सब्र करना
जी
और उनका मुकाबला करना चाहिए, बाकी आप हमारी इस्लाह फरमाएं। बहरहाल आपकी हम इस्लाह क्या करेंगे, बेहतरीन चीज़ आपने कही है। इसके अलावा फिरोज़ अली साहब ने भी, मीर फिरोज़ अली साहब ने भी कहा है कि प्रोग्राम उनको बहुत ही बेहतर लगा और उनके लिए बहुत ही मालूमती था, बहुत बहुत शुक्रिया। और एक और चीज़ भाई इंशाल्लाह मैं थोड़ी देर में पढ़ूंगा, लेकिन चलते हैं पहले एक ब्रेक। नाज़रीन फिर से खुशामदीद कहता हूँ, इकबाल मौलाना हैदर साहब ने बहुत ही बेहतरीन जुमला लिखा है, उन्होंने कहा है कि सब्र का बेहतरीन जुमला, सब्र और इस्तेकामत कामयाबी का सरमाया और मुश्किलात पर गलबे का राज है, इससे बेहतर कोई चीज़ नहीं हो सकती थी। और हफ्ते का मौजू भी हमारा इसी हवाले से चल रहा है, सब्र के हवाले से, तो इंशाल्लाह आपके कमेंट्स का मज़ीद इंतज़ार करेंगे और प्रोग्राम आप ही का प्रोग्राम है, बेहतर बनाने में आपको तआवुन करना ही करना होगा। तो चलते हैं खुर्रम के पास।
जी बहुत शुक्रिया हसन, बिल्कुल आपने ठीक कहा, जितना आप लोग हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल होंगे उतना ही प्रोग्राम में बहरहाल मज़ा आता है। डॉक्टर असदुल्ला अरसलान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और उनसे हमारी गुफ्तगू चल रही है फ्रोजन शोल्डर पर। डॉक्टर साहब, तशखीस कैसे, डायग्नोज कैसे किया जाए ऐसे पे?
इसको डायग्नोज भी जिस तरह दूसरी बीमारियों में हम लोग जो है मरीज से उसकी हिस्ट्री लेते हैं कि हुआ क्या था, दर्द का दौरानिया जो है वो कितना रहता है, दर्द किस वक्त होता है, रात के वक्त ज़्यादा होता है या कम होता है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं उसमें पूछी जाती हैं। देखिए फ़र्ज़ के यहाँ पे चोट लगी है
जी।
तो उसमें भी वो जो मरीज़ है मूवमेंट तो रिस्ट्रिक्ट कर देगा, उसको महदूद कर देगा। फ्रोजन शोल्डर की तशखीस हम इस तरह करते हैं कि उसकी जो है एक्सटर्नल मूवमेंट जो होती है, एक्सटर्नल रोटेशन अगर, और वो भी पैसिवली, एक्टिव और पैसिव दो इस्तलाहें हम मेडिकल में इस्तेमाल करते हैं। मैं मुख्तसर तौर पर बता दूं कि एक्टिव वो होती है जिसको मरीज़ जो है वो खुद अंजाम देता है,
ठीक है,
और पैसिव वो होती है जहां पर मरीज़ खुद अंजाम नहीं देता, वहां पे जो है मुआलिज जो है उसका वो उसका बाजू पकड़ के जो है उसको अंजाम देता है,
ठीक है।
तो हम पैसिवली जो है उसको बाहर की तरफ ऐसे लेके जाते हैं, तो वो वहाँ पर रिस्ट्रिक्ट होती है,
ठीक।
और
है।
उसके अलावा जो है बाज़ का ऐसा भी होता है डिसलोकेशंस वगैरह यहाँ पे हो जाती हैं कंधे में,
जो हड्डी का तो, निकलना जिसको हम कहें,
बिल्कुल, ठीक है। तो उस सूरत में भी ये जो रोटेशन है, एक्सटर्नल रोटेशन, ये महदूद हो जाती है, नहीं हो पा रही होती,
ठीक है।
यहाँ पे एक्सरे लिया जाता है और मजे की बात है इसमें तशखीस जो है इसकी उस वक्त कन्फर्म की जाती है कि जब इसका एक्सरे जो है वो नॉर्मल होता है।
अच्छा
जी, इस यहाँ पर फ्रोजन शोल्डर में ये देखा जाता है कि एक्सरे नॉर्मल है, हड्डियाँ जो हैं वो अपनी असल जगह पर मौजूद हैं, ज़ाहरी तौर पर हमें कोई भी ऐसी जो चीज़ है, कोई भी डिफॉर्मेटी हमें नज़र नहीं आ रही, उसके बावजूद जो है वो उसकी जो महदूदियत है वो जो है वो सामने आ रही है और वो जकड़ा हुआ है, तो वहाँ पर फिर हम जो है उसको कन्फर्म कर
दें। कौन से लोग जो है ज़्यादातर इसमें मुबतला होते हैं?
इसमें जो ज़्यादातर अफराद इस बीमारी में मुब्तला होते हैं ऐसे अफराद जिनकी जो उम्रें हैं वो 40 साल से लेके 60 साल के दरमियान जो हैं होती हैं, ज़्यादातर उनमें ये बीमारी ज़्यादा देखी जाती है। ख़वातीन जो हैं वो मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद पर जो हार्मोनल चेंजेस उनमें आती हैं उसकी वजह से ख़वातीन इसका शिकार ज़्यादा होती हैं। जिन अफराद को चोट लगती है तो चोट की वजह से वो जब उसको महदूद रखते हैं वो इसमें जो है मुब्तला रहते हैं। बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि सर्जरी के बाद जो है एक डर होता है, और ख़ास तौर पे जो है ये जो छाती की जो सर्जरी होती है इसमें जो है मरीज़ वही जो एक कहते हैं ना दर्द का एहसास उसको होता है, तो उस खौफ की वजह से इसको महदूद रखता है और उसके बाद ये मसला पेश आता है। बाज़ बीमारियाँ ऐसी हैं कि जिनमें ये सानवी तौर पर बीमारी असल होती है लेकिन है। जो सानवी तौर पर उसके असरात रोनुमा हो रहे होते हैं तो उसमें ये एक फ्रोजन शोल्डर भी होता है। ऐसी बीमारियां जिस तरह डायबिटिक पेशेंट, डायबिटीज के जो मरीज हैं उनमें ये चीज़ देखी जाती है। हाइपरथायरॉयडिज्म जो है, उसके जो पेशेंट हैं उनमें ये चीज़ पाई जाती है। इसके अलावा दिल की बीमारी में ख़ास तौर पर जो है इस्केमिक हार्ट डिजीज जो है उसमें ये कंडीशन होती है, और बाज़ वक़्त गर्दन में प्रॉब्लम होता है। तो ये चूँकि मसले एक मुनज़्ज़म और एक तरतीब के साथ जो है साथ मिले होते हैं तो उसकी वजह से ये चीज़ जो है सामने आती है।
डॉक्टर ये कुछ तस्वीर जो है आ रही हैं और जो है ये मेरे ख्याल से ट्रीटमेंट के इलाज की तस्वीर
हैं। बिल्कुल, ये जो है इसके जो है इस बीमारी के मुख्तलिफ मराहिल हैं, तीन मराहिल हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, और पहला जो मरहला है वो तकरीबन 3 से 6 माह का होता है, दूसरा मरहला फिर 3 से 6 से 18 माह का, और तीसरा मरहला फिर जो है वो 3 से 6 माह का जो है वो होता है। ये यहाँ पर चूँकि टाइम हमारे पास मुख्तसर है तो यहाँ पर जो है इसकी ट्रीटमेंट बताई गई है मरीज़ को, यही उसकी साइकोलॉजिकली उसको ये बताया जाता है कि मसलन आप दर्द से मत घबराएं, दर्द जो है थोड़ा सा मसला आपको तंग भी करेगा लेकिन ये एक वक्ती है और उसके बाद चला जाएगा, लेकिन आपने जो है रेंज ऑफ मोशन जो है आपके जो है वो हरकत का दायरा जो है आपने उसको गेन करना है। तो पेशेंट यहाँ पर देखें वो लेटे हुए भी उसको ऊपर की तरफ लेके जा रहा है, खड़े हुए भी उसको मसलन चारों तरफ जो है उसकी मूवमेंट जो है वो करवाई जा रही होती है, और इधर वाली तस्वीर में जो है वो एक खास अंदाज में उसको सिखा के
ठीक है तोलिया पकड़ के या कपड़ा पकड़ के
कोई कपड़ा या कोई मसलन ट्यूब रबड़ वगैरह कोई दे दिया जाता है, स्ट्रिंग दे दिया जाता है, अगर फर्ज किया दर्द की शिद्दत कम है वो उसको जो है कर सकता हो तो इस तरह के जो है
ठीक है। अच्छा डॉक्टर ये अभी जो है असल जो इस ये जो तस्वीर आप लेके आई या जो इलाज के बारे में आप बता रहे हैं असल मकसद इसका है कि मरीज हरकत दे इसको, मोशन दे इसको, ये नहीं कि जो दर्द होता है तो उसको यूं बस रख लिया।
बिल्कुल, उसका असल मकसद ही ये होता है कि मरीज जो है उस खौफ से बाहर आए और वो हरकत दे। अब देखिए मैंने उसमें बात की है कि मसलन इसके तीन मराहिल हैं, उसमें जो उसका पहला मरहला है उसको हम मेडिकल इस्लाम में कहते हैं कि फ्रीजिंग फेज जो है, फ्रीजिंग फेज होता है उसमें ये होता है कि, और दूसरा मैं बता दूं कि उसको फ्रोजन कहते हैं, और तीसरा को मसल थाइंग।
ठीक है डॉक्टर साहब, इनको अलग-अलग जो है हम इंशाल्लाह जो है इनके पर बात करेंगे, ये जो तीनों आपने मराहिल बताए हैं। तो अभी चलते हैं हसन के पास, और मेरे ख्याल से हसन भी जो है हमारे लिए कुछ मज़ेदार किस्म की चीज़ें लेके आए। जी हसन,
बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम, बहुत ही एक दो मज़ेदार सी चीज़ें हम लेकर आए हैं नाज़रीन के लिए, और वो हम इंशाल्लाह पेश करेंगे आपकी खिदमत में। एक जो बहुत ही अहम चीज़ है वो इस हवाले से है कि हम लोग दुनिया भर में जाते हैं घूमने के लिए, कहीं ना कहीं रुकते हैं, ये तो नहीं होता कि रात को सड़क पर हम लोग सो रहे हों, और बहरहाल कोई हो किसी होटल का, किसी कह सकते हैं रेस्ट हाउस का, किसी मुसाफिर खाने का हम लोग इंतखाब ज़रूर करते हैं, और वहाँ पर जब हम जाते हैं तो कोशिश करते हैं इतना हमारे पैसे के मुताबिक हम लोगों को सहूलतें मिलें, और बहरहाल बिल्कुल यानी जो इब्तदाई चीज़ें होती हैं कम से कम वो मिले, यानी सोने की जगह साफ़ सुथरी हो, और बहरहाल पानी गर्म हो ताकि नहा सकें, कम से कम ये चीज़, अगर टीवी हो तो क्या कहने उस पैसों में, लेकिन अगर बहुत ही कम है तो बहरहाल उम्मीद ज़्यादा नहीं रखनी चाहिए। लेकिन ऐसी जगह है जहाँ पर आप अगर जाएंगे जनूबी अफ्रीका में, यहाँ से शुरू करते हैं, वहाँ पे आपको एक बहुत ही फ़कीराना ज़िंदगी के लिए, बहुत ही गरीब, अगर आप देखना चाहते हैं गरीब कैसे रहते हैं या बहरहाल यूँ कह सकते हैं बिल्कुल सादा ज़िंदगी में, तो वहाँ पर आपको $80 देने पड़ेंगे। $80 कोई कम यानी कह सकते हैं अमाउंट नहीं है, कोई कम रकम नहीं है, लेकिन बहरहाल एक ख़ास तजुर्बे के लिए बहुत ही अहम है। ब्लूम फेंटन एक जगह है जनूबी अफ्रीका में,
और जनूबी अफ्रीका के बारे में मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि वहाँ पे यानी उमूमी तौर पर ज़्यादा अच्छी हालत नहीं है लोगों की, यानी तकरीबन कहा जाता है कि महीने का $40 एक महीने की तनख्वाह है, यानी ये है एवरेज। और इस हवाले से हम बताना चाहेंगे, ये जो आप सामने देख रहे हैं ये एक होटल है जहाँ पर बहरहाल हो सकता है कि आपको बहुत परेशानी हो, लेकिन इसमें काम ये किया गया है कि आप आकर वहाँ पर रहें और एक ख़ास ज़िंदगी का, जिन्हें कहा जाता है शैंटी टाउन्स कहा जाता है, या फ़ारसी में एक ख़ास लफ्ज़ है उसके लिए कहते हैं हलबिया आबाद, यानी बिल्कुल जो टीन से बने हुए इमारतें या जो शहर होते हैं उनको कहा जाता है। तो यहाँ पर आप आके तजुर्बा कर सकते हैं ख़ास कस्म की ज़िंदगी का। पानी आपको ख़ुद ही गर्म करना है, और कैसे गर्म करना है वो सामने वहाँ पर आग है उसके ऊपर जाके गर्म करिए। और इसमें बिल्कुल इब्तदाई चीज़ें उसमें मौजूद हैं, टीवी ये सब तो आप बिल्कुल भूल ही जाइए, और उसमें बिजली के लिए भी बस कुछ घंटे बिजली रहती है, और बहरहाल माफ़ कीजिएगा लेकिन टॉयलेट के लिए वहाँ पे पब्लिक टॉयलेट का इंतज़ाम किया गया है कि कमरे वमरे में नहीं है। $80 के लिए अब कौन जाएगा खुर्रम, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। ये दिलचस्प चीज़ है यकीनन, इसमें
इंसान को ऐसा तजुर्बा भी करना चाहिए।
बिल्कुल हाँ, ये तजुर्बा बहुत अच्छा है, लेकिन $80 के लिए मेरे ख्याल में वहाँ पर आप जाके रहें तो बेहतर है। खाली हाँ, एक चीज़ ये है कि आप यहाँ पर अपनी सफाई का ख्याल रख सकते हैं और एक मामूली बहरहाल ज़िंदगी का तजुर्बा कर सकते हैं, खुसूसन उन लोगों के लिए जो बहुत ही बहरहाल नाज और नेमत में ज़िंदगी बसर कर चुके हैं। उनके लिए तो मेरे ख्याल में थोड़ी बहुत ज़रूरत होती है। हमेशा कहा जाता है कि माल में अपने नीचे वालों को देखो ताकि जो कुछ तुम्हारे पास है उसकी कद्र जानो। चलते हैं एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद आपकी खिदमत में हाजिर होंगे एक और मज़ेदार ख़बर लेकर। अमेरिका की येल यूनिवर्सिटी में एक तहकीक हुई है और बहुत ही अहम तहकीक है, वो इस हवाले से है कि 8 से 18 साल के बच्चों पर ये तहकीक की गई और देखा गया कि अक्सरियत की शक्ल ऐसी हो जाती है सब्ज़ी खाते वक्त, सब्ज़ी तरकारी खाते वक्त ऐसी भयानक शक्ल और डरावनी शक्ल उनकी हो जाती है और वो अंदरूनी खौफ को उनके दिखाती है। अक्सर वालदेन जो हैं या ज़बरदस्ती करते हैं या सिरे से छोड़ देते हैं उनको खिलाना, और यानी उनके लिए जो मुफीद चीज़ें होती हैं। होता क्या है कि हम लोगों को परेशान नहीं होना चाहिए, वहाँ के मुहक्किकीन ने, येल यूनिवर्सिटी के मुहक्किकीन ने ये देखा, और ये तहकीक बहुत ही अहम तहकीक थी जो 2 साल के अंदर हुई है, और उसमें पता चला कि बच्चे जो होते हैं आम हालात में पैदा होते ही उनमें ख़ास यानी खुदा की तरफ से ये नज़्म और इंतज़ाम ये रहता है कि जब बच्चे वहाँ पर जाते हैं ये चीज़ें खाने पीने के लिए, ताकि खुदा न खास्ता जहरीला कोई पौधा न खा लें, या बहरहाल बच्चे रहें उसके कांटों से, मुख्तलिफ़ पौधों के बहरहाल कांटे होते हैं या उससे बहरहाल कोई चीज़ चुभ जाती है उन पौधों से, ताकि उससे दूर बच्चे रहें। सब्ज़ रंग जो होता है उसकी तरफ जाते ही नहीं और उनको सख्त नापसंद होता है। आप ज़्यादा बच्चों को अपने प्रेशराइज़ नहीं करें, सिरे से छोड़ें मत, समझाने की कोशिश करें, लेकिन ज़बरदस्ती भी नहीं करें क्योंकि बच्चों के लिए गैर मुफीद होती है, और आहिस्ता उम्र बढ़ने के साथ साथ ये मसला उनका हल हो सकता है। और बहरहाल सब्ज़ी खाने के बारे में अगर जितना आप उनको बताएंगे वो बेहतर तरीके से उसको समझ सकेंगे। चलते हैं खुर्रम के पास।
बहुत बहुत शुक्रिया हसन, और जो है बड़ी प्यारी तस्वीर जो है ये भी आप लेके आए। अच्छा डॉक्टर साहब, वक्त हमारे पास महदूद है, मराहिल के बारे में डॉक्टर साहब आप बता रहे थे।
जी, इस बीमारी की जो है 3 मराहिल जिस तरह मैंने अर्ज़ किया, पहला जो मरहला है उसको हम मेडिकल इस्लाम में फ्रीजिंग फेज़ कहते हैं।
ठीक है,
इसमें बिल्कुल मौजू से भी वाजह है, इसके अनवांस भी वाजह है कि इस मरहले में जो बीमारी है वो शुरू होती है, वो आहिस्ता आहिस्ता जो है उसमें जकड़ाव का जो एक अमल है वो शुरू होता है। तो इसमें ख़ास तौर पर मरीज़ को दर्द की जो शिद्दत है वो ज़्यादा महसूस होती है।
ठीक है,
और इसमें एक ख़ास बात यह है कि रात के वक्त जो है ये दर्द ज़्यादा हो जाता है, और बिलखसूस जब कोई फालियत आप अंजाम देते हैं, कोई काम करने लगते हैं, तो उसमें जो है ये दर्द की शिद्दत जो है वो ज्यादा हो जाता है।
तो मैं सिर्फ नाज़रीन को बताते चलूं कि तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये वर्जिश है,
असल में ये ट्रीटमेंट है।
जी बिल्कुल,
और ये जो है यहाँ पे मसलन असिस्टिव जो है एक तरह की एक्टिव असिस्टेंट है जो दीवार भी उसको मदद देती है, ताकि वो खुद अगर वो पूरी तरह नहीं कर सकता, ऊपर नहीं लेके जा सकता, तो दीवार की मदद से जो है ऊपर लेके जा सकता है। और ऊपर वाली जो है वो तकरीबन ये है कि आप फ्रीली जो है वो एक पेंडुलम की तरह जो उसको बाजू को छोड़ दें, उसको हिलाएं और फिर जो है इस तरह की वर्जिश करें। जो उसका दूसरा मरहला है उसमें ये होता है कि पूरी तरह से जकड़ा जाता है,
ठीक है,
उसमें थोड़ा सा दर्द का एहसास कम होता है, लेकिन जो है
जकड़ाव
वो अपने अरूज पे पहुंच जाते हैं। फिर उसके जो तीसरा मरला है थाइंग, उसमें ये होता है कि फिर उसमें एक बहबूदी आना शुरू हो जाती है, एक बेहतरी आती है, जो मरीज़ है वो ठीक होना शुरू हो जाते हैं। तो इस सारे मरहले में एक आम इंसान के लिए, एक आम बंदी के लिए जो है, हमारा एक मेडिकल जो है शख्स के तौर पे मेरा ये मशवरा है कि आप दर्द को जो है उससे मत घबराएं। इस तरह की कोई भी कंडीशन हो तो बेहतर है कि फौरी तौर पे किसी करीबी फिजियोथेरापिस्ट जो है, ऑर्थोपेडिक जो है, उससे आप रब्ता करें,
ठीक है,
ताकि जो है आपको जो बाद वाली जो मुश्किलात हैं उनका सामना ना करना पड़े।
अच्छा डॉक्टर साहब, जो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा मुफीद टॉपिक जिस पर बात की, हमारा टाइम महदूद है। एक जुमले में हम चाहेंगे कि अगर आप, हमारा हफ्ते का मौजू जो चल रहा है वो सब्र के बारे में चल रहा है, अगर हमारे नाजरीन को अगर आप कोई इस सिलसिले में कोई बात करना चाहें।
देखिए, ज़िंदगी में इंसान को बहुत सारी जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, और एक कामयाब इंसान वही है जो हालात को एक अच्छे तरीके से हालात का जो है सामना करे, और इंसान को जो है हर हाल में सब्र का जो है वो दामन थामे रखना चाहिए, ताकि इंसान जो है हर जगह पर जो है सुरखरू हो। तो सब्र जो है, कोई इंसान जो है कुछ बर्दाश्त करता है और उसके बाद ही जाके जो है उसको उसका जो है सिला मिलता है। हर मुश्किल के बाद आसानी जरूर आती है, तो इसलिए इंसान को जो है घबराना नहीं चाहिए और सब्र करना चाहिए।
बहुत खूबसूरत बात की, हर मुश्किल के बाद आसानी जरूर आती है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, बहुत अहम मौजू था जिस पर आपने बात की, और सब्र के बारे में भी जो है आपने खूबसूरत बात की। बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए हमारे स्टूडियो। जी हसन,
बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम, और हमारे साथी बताने की टेलीफोन लाइन पर भी हमारी जो माहिर हैं,
अच्छा,
उनसे हमारा रब्ता हो गया है। थोड़ी देर में इंशाल्लाह होगा, चलते हैं ब्रेक लेते हैं, उसके बाद आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। नाज़रीन, फिर से खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम सुबह ज़िंदगी में, और हम लोगों का रब्ता हो गया है मेरे ख्याल में मोहतरमा सैयदा इरम नकवी साहिबा से, और इंशाल्लाह गुफ्तगू का सिलसिला उनसे हम शुरू करते हैं। मैं आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। मेरे ख्याल में अभी तक रब्ता, हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
जी अस्सलाम वालेकुम,
खैरियत से हैं आप?
अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग कैसे हैं?
अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक है। हम लोग, मौजू हम लोगों का चल रहा है सब्र के हवाले से, और सब्र में उसके मुख्तलिफ पहलू होते हैं। कुरान के बारे में जो सब्र के मुख्तलिफ यानी पैमाने बताए गए हैं उनके बारे में भी हमारी गुफ्तगू हो गई है। वो ऐसा मौजू नहीं है कि ख़त्म होता जाए यानी एक ही हफ्ते में या एक दिन में, लेकिन इसके बारे में आपका क्या ख्याल है?
मैं इसको थोड़ा सा वही कि इसको मैं आज के दौर में जब हम देखते हैं, हम पहले तो मिसाल लेते हैं हमेशा अपने आइमा मासूमीन की, और हम उनको ज़िंदगी में नमूना अमल समझते हैं और उनके सब्र को देखते हुए आज अब हम असर हाजिर में जब देखते हैं, तो इमाम खुमैनी की मैं आपको मिसाल देना चाहूँगी सब्र के लिहाज से, कि रहबर मुअज़्ज़म इनकलाब फरमाते हैं उनके लिए कि इमाम जो है सब्र करने में एक ओकियानूस की तरह थे, मतलब एक ओशन की तरह थे, कि जब हम कहाँ देखते हैं कि किसी भी निज़ाम के खिलाफ दुनिया में सारी दुनिया एक किस्म की उस निज़ाम के खिलाफ हो और उसकी उस निज़ाम की कोई मदद ना की जा रही हो, इन मुश्किल शराइत में भी जब हम देखते थे कि कहीं पे कोई परेशानी आती है, इमाम जो है बहुत ही सब्र और शिकीबाई के साथ उस मुश्किल के लिए जो है, मतलब बहुत ही आरामिश में जो है उस मुश्किल का हल ढूंढते थे, कहते थे कोई मसला नहीं है, हल हो जाएगा, और खुदा पे तवक्कुल करते थे हर मुश्किल में। ये एक बहुत बड़ी मिसाल है कि इंसान जो है किसी भी जो है सब्र का जो है जैसे कहते हैं दामन जो है हाथ से ना छोड़े।
अच्छा, एक यानी खुदा ने और यानी कुरान करीम में भी इस लफ्ज़ की तरफ इशारा हुआ है इंतज़ार, और दूसरी तरफ सब्र, इसमें फ़र्क क्या है?
इंतज़ार असल में वही सब्र का हिस्सा है। आपको पता है कि किसी भी जब इंतज़ार करेंगे तो उसमें सब्र खुद ब खुद शामिल है। सबसे मुश्किल तरीन चीज़ है इंतज़ार करना, उसमें इंसान को महसूस हो रहा होता है कि वक्त जो है वो कट नहीं रहा है, लेकिन जब वो सब्र के साथ इस इंतज़ार को करेगा तो वो उसके लिए आसान हो जाएगा।
सही, मैं एक सवाल पूछना चाह रहा था कि अक्सर हमारे सवाल लोग ये पूछते हैं कि कहाँ पर सब्र किया जाए और कहाँ पर सब्र ना किया जाए, कहाँ पर हद उसकी ख़त्म हो जाती है, कहाँ पर मसा, अगर आपको कोई, आपको ऐसा लगता है कोई आपको तंग कर रहा है, आपको हमेशा जो है आपके लिए परेशानी का बाइस बन रहा है, तो कहीं पर जाके तो आपने बोलना है, उसके सामने खड़ा होना है, या नहीं हमेशा जो है सब्र किया जाए?
देखिए ये तो अब इस पे है कि वो किस तरह से तंग कर रहे हैं। कभी होता है कि इंसान को बहरहाल उसका राह हल भी जो ढूंढना होता है उसमें भी सब्र कहीं ना कहीं शामिल है, क्योंकि अगर आप उसको उसके बदला लेने की और उसमें कैफियत में आ जाएंगे तो फिर तो वही बात है कि सब्र का दामन आपके हाथ से छूट जाएगा।
सही है
जी।
अच्छा नेवी साहब, सब्र और गुस्से को कैसे हम जो है आपस में उसका ताल्लुक बयान कर सकते हैं?
गुस्सा तो जाहिर है कि फितरी चीज है, इंसान को गुस्सा तो आता है किसी भी ऐसी, और खास तौर पे उन हालात में जब वो कोई चीज उसकी मर्जी के खिलाफ हो रही होती है। तो उसमें देखना ये होता है कि ये जो हमारी मर्जी के खिलाफ जो चीज है इसमें आया जाती पहलू है या कुछ। जो हम देखते हैं वो एक वाक्य आप लोगों ने सुना होगा मशहूर है कि किसी जंग में जब हजरत अली अलैहिस्सलाम के जब वो चेहरे मुबारक पे वो दुश्मन ने जब की जो एक वो सुना होगा आपने, तो उसमें उन्होंने क्या किया था कि एक वक्त उन्होंने सोचा कि ये अब अगर मैं इसको इस वक्त इसका जो है जैसे कहना चाहिए कि खत्म करूंगा तो ये एक मेरा इस चीज में वो जाती वो ना आ जाए।
सही।
अच्छा यानी तो, सब्र में ये इसका भी यानी वो सब्र का नतीजा हो जाता है, सब्र उसका नतीजा हो जाता है कि मतलब इंसान अगर सही तौर पर फैसला करे और गैर खुदा को किसी चीज में शामिल न करे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया नकवी साहिबा, और इंशाल्लाह आपको जहमत हम देते रहेंगे अगले प्रोग्रामों में भी और इस बारे में इंशाल्लाह गुफ्तगू करेंगे।
बहुत शुक्रिया।
अच्छा खुर्रम, हमारे यानी जो आइम्मा की ज़िंदगी में या आइम्मा से मंसूब जो अफराद हैं उनमें सबसे ज़्यादा शायद हम लोगों को सब्र का पहलू हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की ज़िंदगी में नज़र आए। उन्होंने करबला के वाक़े के बाद सब्र को यानी अपने उरूज तक पहुँचा दिया। फ़ख्र सब्र अगर उनको कहा जाए तो यानी हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की शख्सियत ऐसी थी कि सब्र को उन पर फ़ख्र करना चाहिए।
सही, बिल्कुल ठीक है आपने सही। अच्छा हसन, एक और जो चीज़ मैं यहाँ पर बात करना चाह रहा था वो ये था कि हमारे सारे आइमा जो हैं उनकी ज़िंदगियाँ अगर उठा के देखें तो जैसे कि मौला कायनात इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सब्र जो है अगर आप एक जिस्म की मिसाल लेते हैं तो दीन एक जिस्म है और सर जो है उसका वो सब्र है। तो इमाम ने कहा कि अगर वो सर नहीं होगा तो वो ईमान भी नहीं है आपका। तो हकीकत में ऐसा ही है कि हमारे सारे आइम्मा ने हमें एक जो बहुत अहम चीज़ सिखाई अपनी ज़िंदगियों से वो यही है कि अपनी ज़िंदगियों में हम सब्र करना सीखें और फौरन गुस्से में आ जाना, क्योंकि ख़ुद इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आप दो काम जो करते हो कि एक बहुत गु़स्से में कोई वादा कर देना या कोई 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 डिसीजन ले लेना वो, और बहुत खुशी में किसी को कोई वादा दे देना कि जी हाँ जी मैं ये करूँगा, ये दोनों चीज़ें जो हैं इमाम ने कहा गलत हैं। बिल्कुल ऐसा ही है कि जब इंसान गुस्से में होता है तो मेरे ख्याल में सब्र करना चाहिए, ठीक उसके बाद आप कोई इकदाम करना चाहिए।
बिल्कुल सही कह रहे हैं खुर्रम, खुसूसन ये चीज़ हम लोगों को पूरे उसमें करबला के वाकये में हम लोगों को नज़र आती है वो इसी में था कि एक तरफ ने सब्र का दामन छोड़ दिया और गैर खुदाई काम करने लगा, तो उसका नतीजा उस वक्त सामने आया जब सामने के यानी कह सकते हैं पार्टी ने जो खुदा की पार्टी थी हिजबुल्लाह थी पूरे तौर पर उसको नतीजा फिर खुदा ने दिखाया और किसका नाम आज बाकी है किसका नहीं है।
बिल्कुल सब का नतीजा है बेशक, बिल्कुल बहुत खूबसूरत बात।
चलते हैं नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद आपकी खिदमत में हाजिर होंगे।
जी नाज़रीन, आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हैं हम लोग, और इससे पहले कि हम लोग गुफ्तगू को आगे चलाएं मैं सिर्फ ये बताता चलूं अपने नाज़रीन को कि जैसे कि आप लोगों को पता है कि रिपोर्ट्स मुख्तलिफ किस्म की हम मुख्तलिफ मौजूआत पे तैयार कर रहे हैं, कुछ तैयार हो चुकी हैं, वरियानी साहब की जो कुकिंग की वो हैं प्रोग्राम्स हैं वो तैयार हो गए हैं तकरीबन, मैं अगर सही कह रहा
हूं। और कई तेहरान में घूमने घामने की जगह हैं वो इंशाल्लाह उसके हवाले से आपको हम बताएंगे, और बहुत ही जल्द आपको बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें तेहरान शहर की मिलेंगी।
बिल्कुल इसी सिलसिले में जिस किस्म के आपके जहन में कोई आपके जहन में मौजू है, कोई चीज़ ख़ास चीज़ आप देखना चाहते हैं, किसी ख़ास चीज़ पे हम आप चाहते हैं कि हम रिपोर्ट दिखाएं, तो ज़रूर हमें बताएं, कमेंट करें, हमें फ़ोन लाइन के ज़रिए बताएं और हम इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि उस
आपके मशवरे बहुत हम लोगों के लिए ज़्यादा मुफीद होते हैं। और आप समझिए कि एक आम हालात में आप जब किसी रास्ते पर जा रहे होते हैं एक नक्शे की आपको ज़रूरत होती है हमेशा,
ठीक है,
खुसन अगर रास्ता अनजाना हो आपके लिए,
तो आपकी बातें, आपके मशवरे और आपके नज़रियात हम लोगों के लिए उसी नक्शे की तरह हैं, उसके ऊपर हम लोग सही तौर से चल सकते हैं, सही तौर पर यहाँ पे फैसला कर सकते हैं। मैं ये बिल्कुल आप यानी चुपके से सुनिए कि अंदर की मैं बात कर रहा हूँ। और इस हवाले से मैं ये बताता चलूँ कि जो मुख्तलिफ हम लोग यानी डिसीशंस लेते हैं, जो मुख्तलिफ यहाँ पर गुफ्तगू होती है, हत्ता बहुत ही जो यहाँ के ऊपर के लेवल के जो कह सकते हैं इंचार्ज होते हैं और जो मुदीर जिन्हें कहा जाता है वो होते हैं, बहुत ज़्यादा हमारे नाज़रीन की बात उनके लिए मुफीद होती है और अहमियत रखती है।
बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। मैं सिर्फ हसन, इससे पहले हमारा वक्त ख़त्म हो, मैं सिर्फ ये बताता चलूँ कि हमारा कल का जो मौजू होगा, डॉक्टर विवेक कुमार हमारे साथ इंशाल्लाह मौजूद होंगे, डेंटिस्ट हैं वो, और मुँह की सफाई सुथराई और उसके बारे में जी दांतों का ख्याल रखना और उसके बारे में
जुड़ा हुआ है मेरे
बिल्कुल बिल्कुल, हाँ दोनों चीज़ें जुड़ी हुई बिल्कुल तकरीबन, उस पर जो है बात करेंगे। हसन एक चीज़ बस, ये प्रोग्राम ख़त्म होने वाला है लेकिन मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहूँगा कि हमारे जवानों में जो है थोड़ी सी बेसब्री दिखने को मिलती है, आपके ख्याल में क्या वजूहात हो सकती हैं और कैसे इस चीज़ को हल किया जाए?
इसमें अगर मकसद को मद्देनज़र रखा जाए, इसमें ये होता है कि आदमी का दूर तक यानी बिलफर्ज आपको मालूम है वही नक्शे वाली बात, यहाँ पे भी काफ़ी हद तक हम लोगों के लिए कह सकते हैं सही साबित हो सकती है कि नक्शा उस वक्त आप लेते हैं जब आपको कहीं पहुँचना हो,
ठीक है,
आपका यानी कह सकते हैं मकसद बिल्कुल आपके लिए वाजह है, टारगेट आपके लिए वाजह है, अब आपको रास्ता ढूंढना है,
ठीक है,
सब्र जो है हम कह सकते हैं कि वो रास्ता है, अगर आराम आराम से चलेंगे, कदम फूंक फूंक के चलेंगे तो बहुत बेहतर है बनिस्बत इसके कि अचानक दौड़ पड़े
एकदम बीच में रोड से नीचे उतर जाए।
बिल्कुल
बिल्कुल, क्योंकि जिंदगी में मोड़ भी है, कहीं पर स्पीड ब्रेकर भी है, तो अगर सब्र के साथ नहीं चलेंगे तो जारी बात है या तो ये है कि एक्सीडेंट हो जाएगा या जो है गाड़ी रोड से नीचे चलेगी। बिल्कुल अच्छी बात की आपने, जारी बात नक्शा जो है उसको फूंक फूंक को आपको चलना है और बड़े आराम से सब्र के साथ चलना है। और जो हसन ने बात की कि करबला का वाकया जो है उसमें सब्र किया गया और आज हर किसी को मालूम है कि किसका नाम रह गया और किसका नाम मिट गया,
और ये हमेशा हमें याद रखना चाहिए कि खुदा हमेशा मुंतजरों के साथ रहता है, साबरीन के साथ रहता है। खुदा ने खुद कुरान में कहा है कि हम तुम्हारे साथ मुंतजरीन में से हैं।
जी
नाज़रीन, आज का ये प्रोग्राम अपने इख्तिताम पे पहुंचता है, कल तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए,
खुदा हाफ़िज़।